मैं सवाल करूं?
जी बिस्मिल्लाह करें।
सर मेरा आज का सवाल है कि ये जो आज की बात अपन की किताब है सर, तो मुझे ये मालूम करना था कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मोमिन को मर्तबा एहसान हासिल होता है। मर्तबा एहसान के दो दर्जे हैं। एक दर्जा ये है कि बंदा महसूस करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और आधा दर्जा ये है कि बंदा ये देखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। मैंने एहसान को जब मीनिंग में देखा तो उसका एहसान किसी बिगड़े तवाज़ुन को ठीक करना या कमी को पूरा करना, इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैं आपसे पूछ सकती हूँ इसके बारे में?
मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि एहसान का लफ्ज़ जो है ये हुस्न से है, हे सीन नून। असल में ये जो तवाज़न को ठीक करना है या बिगाड़ खत्म करना है, ये किसी चीज में हुस्न को वापस लाना हुआ। अब आपका किसी से ताल्लुक है, आपकी कोई सहेली है, आप कहते हैं मेरा फलां से जो ताल्लुक है वो बड़ा ही खूबसूरत है। हम कहते हैं ना फलां मियां बीवी का आपस में ताल्लुक बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है, कहते हैं या नहीं? अब ताल्लुक में हुस्न पैदा होना क्या ये एहसान नहीं है? बात आ गई समझ? अब देखे ना, अब बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक में कम से कम इतना तो हुस्न होना चाहिए कि बंदा ये महसूस करे हो कि अल्लाह उसे देख रहा है। ये ताल्लुक में कम से कम इतनी जान तो हो कि बंदे को महसूस हो कि मुझे अल्लाह वॉच कर रहा है। आई एम बींग वॉच्ड बाय अल्लाह। यह है पहला दर्जा। अब इसकी आला दर्जा है हुस्न क्या कि इस दर्जे पे हो कि आपको देखने वाला दिखने लग पड़े। देखे ना, ये खवातीन में ये सलाहियत ज्यादा होती है, सब में होती है, मर्दों में भी होती है। कोई उन्हें नजर टिका के ताड़ रहा हो हजूम में, उन्हें फौरन पता चल जाता है कि बंदा मुझे देख रहा है। और करें, लेकिन हम ये सलाहियत अल्लाह के लिए क्यों नहीं बरतते? ठीक हो गया? देखे ना, इससे मर्तबा एहसान, मर्तबा कहते हैं डिग्री को,
डिग्री को जी बिल्कुल,
दर्जे को
जी
सर बिल्कुल कहते हैं। ताल्लुक का दर्जा क्या इतना खूबसूरत हो गया कि मुझे अल्लाह का देखना महसूस होने लग पड़े? और फिर इससे आगे रफ्ता रफ्ता जू जू आप इस कैफियत को एंजॉय करेंगे, एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बे करीम जलवा अफरोज हो जाएंगे आपके इदराक पे। ये कुरान में कहा ला तुद्रिकु लबसारा, किसी बसारत की मजाल नहीं कि उसका इदराक हासिल कर ले। वह हो वह युद्रिकु लबसारा, वो तो बसारतों का इदराक बन जाता है, वो तो वही है जो खुद को बसारतों का इदराक बना दे। यानी इंसान सिर्फ ये कर सकता है कि अल्लाह के देखने को महसूस करने की आदत में मुब्तला हो जाए। इस आदत की वजह से अल्लाह रब्बे करीम है उस पर जरूर कर्म करेंगे और उसको देखने वाले को भी दिखा देंगे कि भी तुम्हें देख कौन रहा है, मैं ही तो देख रहा हूँ। तो बात वाजे हो गई कि दर्जा मर्तबा एहसान की असल और छोर क्या है, यानी दर्जा हुस्न। अब उन्होंने जो डिक्शनरी में लिखा के भी किसी चीज का तवाज़न खत्म कर देना, यानी बिगाड़ खत्म कर देना और उसे वापस मतवाज़न कर देना, तवाजन का दूसरा नाम हुस्न है। लेकिन अगर एक चीज प्रोपोर्शनेट बनी हुई है, बैलेंस है, तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक हो गया ना? अब देखे ना, हम किसी को खूबसूरत क्यों कहते हैं? उसके आजा की साख जो है उसमें तनासब होता है। अगर एक चीज बड़ी हो जाए, नाक लंबी हो जाए, तो क्या होता है? सारा हुस्न मान बढ़ जाता है। किसी को तवाजन कहते हैं ना। वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा सवाल है। बातें मेरे मराठी में से ही वो पिछले उसमें भी आपने वाजे किया था, पर मुझे वाजे नहीं है। मेरा सवाल है कि इंसान अपने इजाफे अकल का इस्तेमाल जब करता है, वो उसकी गलतियाँ कराती है। सर एक तो ये हो गया ये भी, और दूसरा हमने ही इकदाम कर लिए हैं
जी, अपनी इजाफी अपनी अकल का। देखें, हमने अगर अकल का इस्तेमाल वही की रोशनी में किया तो ये सही हो गया, लेकिन अगर हमने अपनी अकल का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया और वही की तर्जों को नजरअंदाज किया या बालफाजे दीगर कुरान के डूज एंड डोंट से हटकर किया, तो क्या सूरत हाल बनेगी? गलतियां सरजद होंगी, क्योंकि इंसान गलती कब करता है? जब वो आगे नहीं देख पाता। गलती की बुनियाद किस बात पे है? कि हमारा विजन काम नहीं कर रहा, यानी हमारी अकल अपने चक्रों में पड़ी होती है, वो आगे नहीं देख रही होती। मैं काम करूं, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो आगे देखने की सलाहियत है, इसी को विजन कहते हैं, इसी को विजडम कहते हैं, इसी को हिकमत कहते हैं। ठीक हो गया? तो अकल जो है वो इस तरफ हम नहीं लगाते कि अकल के इस्तेमाल से आगे देख सके कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अच्छा ये हो सकता है, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, फिर ये इस तरह कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाऊं, शतरंज का खेल जो है ना, वो बंदे को आगे सोचना सिखाता है। किसी ने ये बात सुनाई थी मुझे कि हजूर कलंदर बाब औलिया ने, मतलब उन्हें शतरंज पे बहुत अबूर हासिल था, वो आगे की चालें सोच लेते थे कि अगला क्या चाल चलेगा तो मैं उसको कैसे काउंटर करूंगा, वो ये चाल चलेगा तो मैं कैसे काउंटर करूंगा। तो वो ये सलाहियत जिसमें ज्यादा होती है वो बड़ा अच्छा शातर होता है। शातर मैंने शतरंज खेलने वाला। ठीक है? तो एक दफा एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ शतरंज खेलें। तो हजूर कलंदर बाब औलिया ने कहा कि ठीक, आप चाल चलें। उन्होंने चाल चली तो हजूर कलंदर बाब औलिया ने उनसे पूछा कि 40वीं चाल का आपके पास क्या जवाब है? यानी उन्होंने 40 चालें सोच ली उसी एक सेकंड में। वो बंदा काफी पेंसिल लेके बैठा और चालें लिखता रहा, एक लिखी, दो लिखी, तीन लिखी, चार लिखी, पांच लिखी, छह, सातवीं पे कहने लगा इससे आगे मैं नहीं सोच पा रहा, सोच नहीं पा सक रहा। तो इससे आपको अंदाजा हुआ कि आगे देखने की सलाहियत का कहां कहां इस्तेमाल होता है। अब ये दुनियावी बात है ना, बहुत ही मतलब एक भौंडी सी मिसाल है, लेकिन आप देखें कि आगे देखने की सलाहियत हर वक्त हम वक्त काम करना चाहिए। अब वाजे हो गई बात, जब हम अपनी अकल का इस्तेमाल अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, अगर हम उसे वही के ताबे कर लें, यानी कुरान के डूज एंड डोंट्स के मुताबिक लें, तो गलतियों का इस्तेमाल कम हो जाएगा।
जी सर,
ठीक हो गया ना?
यस सर, बाकी ये वाला जो है ना, यहाँ पर अपनी कमजोरी या खामियां दिखती है, पकड़ना नहीं आ रहा।
जी, मैंने अर्ज किया ना कि सिंपल सी बात है, आगे सोचें। मसलन आप कोई जुमला कह रहे हैं तो जरा रुक के सोचें कि इसका क्या असर होगा, फिर आप देखते हैं कि इसका तो कोई असर नहीं होगा, तो आप जुमले को मौसर बनाएंगे ना, यानी ऐसा जुमला तराशेंगे जिसका असर हो। अब आप बच्चों को एक बार तालीम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो नहीं सुन रहे, तो आप उनसे कहेंगे कि भी अगर आप बात नहीं सुनेंगे, बात को तस्लीम नहीं करेंगे, तो किसका नुकसान होगा? अगर आप बात को सुन के समझ के उस पर अमल करेंगे तो किसका फायदा होगा? लामहाला बच्चा कहेगा जी मेरा, तो सीखो के फिर आप बात सुन के ना समझ के किसका नुकसान कर रहे हैं? तो आप अपना फायदा कर लो भाई, मैं इतना ही तो कह रही हूँ, और करें।
जी सर,
ठीक हो गया?
यस सर। एक और सवाल
इरशाद जी। जी
जी सर, बातें मेरे दादी में ये है, फरमाया मुझे ये आदत भी हासिल है कि अपने मुर्शिद गुरु सिकंदर बाबा को बहस करवाने में सारी बातचीत मेरी ही जरिए हुई थी। को और मेरे को रोड के एक होटल में आयाम के दौरान हुजूर सिकंदर बाबा औलिया को बहस करने पर राजी करने के लिए उन्होंने सारा मामला मेरे ही जरिए दे दिया। एक ये वाला सवाल सर,
इसमें सवाल क्या है?
सवाल ये है सर कि ये सिकंदर बाबा जो इतने बड़े होते हैं, फिर यहाँ पर ये जो अब्बा ने उनके लिए इस्तेमाल किया बैठ करने के लिए
राजी के समझ। इसमें ये सवाल मैंने पूछा था हजूर मुर्शिद करीम से, तो हजूर मुर्शिद करीम ने जो जवाब दिया था वो मैं आपके गोशगुजार कर सकता हूँ। उन्होंने फरमाया था कि सिलसिले की बुनियाद रखने के लिए उनको ये निजाम समझना जरूरी था और इस निजाम का हिस्सा बनना जरूरी था। ये जो दरसो तदरीस का, ये जो तबलीग का, ये जो तरबियत का निजाम है, देखे ना, वो खुद ताजुद्दीन बाबा औलिया की तरबियत से किस दर्जे पे पहुंच चुके थे, वो ऑलरेडी तकलीम का काम कर रहे थे। ठीक हो गया ना? एक सवाल के जवाब में है, जब यही सवाल हजूर सिकंदर बाबा औलिया से किया कि जी आप तो तकलीम में थे, तो आपने ये कुतुब-ए-इरशाद यानी जो तबलीग का काम करते हैं, जो अल्लाह की बातों को आगे फैलाते हैं, इरशाद करते हैं, यानी के लोगों के जहनों को इस तरह पॉलिश करते हैं ताकि वो अल्लाह के लिए जहन बन सके। तो ये क्योंकि देखो ना, हजूर ताजुद्दीन बाबा औलिया नागपुरी ने हजूर सिकंदर बाबा औलिया का वो जहन तो बना दिया था कि वो खुद तकलीम में काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें हजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि आप किताब लिखें और फिर इसको क्या करें, सिलसिले को एक कायम करके मेरी طرز فکر کو عام کریں. اب ہمارا سلسلہ تعلیمات سے زیادہ طرز فکر پہ زور دیتا ہے کہ بھئی تعلیمات پہ عمل تبھی تو کریں گے جب آپ کی طرز فکر نبی جیسی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو عام کرنے کے لیے جو میکانزم درکار تھا، جو خانقاہی نظام کا طریقہ تھا، اس کو اپنانے کے لیے انہیں بیعت ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے؟ تو حضور قلندر باب اولیاء سے جب کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کیسے کیا، تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنا کرتا اتار دیا تھا، یعنی وردی اتار کے مجھے یہ سبق پڑھنا پڑا تھا. یعنی جب انہوں نے یہ بیعت کیا تو وہ اپنے تقویمی عہدے سے وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی سر، بہت بہت
شکریہ. تھینک
یو سر، میرا ہو گیا.
جی ویلکم. السلام علیکم سر.
جی وعلیکم.
السلام
علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
سر میرا بس یہ ایک ہی کوشچن ہے، میں یہ درویش کو سمجھنا چاہ رہی ہوں سر. درویش کس کو کہتے ہیں؟ معنی اور مفہوم
آپ کو کیا معلوم ہے؟
سر مجھے نہیں معلوم، میں جب بھی تو پوچھ رہی ہوں.
نہیں ویسے آپ کے ذہن میں کیا؟
اللہ کے در کا.
جی
میرے ذہن میں جو آ رہی تھی بات وہ. جی سر.
جی آپ فرمائیے، پہلے آپ بات تو کریں.
سر مجھے تو ذہن میں یہی آ رہا تھا جو اللہ کے در کا فقیر ہوتا ہے،
بالکل صحیح آ رہا تھا.
اچھا صحیح آیا سر؟
بالکل صحیح آیا.
اچھا صحیح ہو گیا سر. پھر تو
مطلب دیکھیں نا، فقیر جی درویش ہمارے ہاں جو تصورات ہیں ان کو ہٹا دیں. اللہ کے در کا ہو جانے والا درویش ہے. ماشاء اللہ جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیا جی موسٹ ویلکم.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم.
سوال یہ ہے کہ فقیر سے کیا مراد ہے؟ فقیر ہے؟
نہیں اسے چھوڑ دیں، وہ ٹیکنیکل بحثیں اپنی جگہ.
اچھا
کلمہ پڑھیں ذرا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ یعنی میں کسی کا محتاج نہیں سوائے اللہ کے. یعنی آپ اللہ کے محتاج ہیں. آپ اللہ کے کیا ہوئے؟ فقیر ہوئے کہ نہ ہوئے؟
جی سر.
تو اللہ کا محتاج ہونا ہی فقر ہے. بس باقی ساری بحثیں ہیں چھوڑ دیجئے ان کو، ساروں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. کتنا مختصر ہے بھئی، کلمہ پڑھنے سے بندہ اللہ کا فقیر ہو گیا. یہ شعور ہے ہمیں؟
بالکل.
ہم نے جب اقرار کر لیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کہ میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، یعنی درو بست میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں اللہ کا منگتا ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوا یا نہ ہوا؟ ہم نے گداگری کو فقیر کہہ دیا. جو لوگوں سے مانگتے اس کو تو گداگر کہتے ہیں. فقر یہی ہے کہ بندہ مخلوق سے توقعات کو چھوڑ دے اور اللہ کا محتاج ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع بات ہے. بالکل. ذہن کی
تاریخ کھولی آپ نے، وہ چھوٹے
अर्थ ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम जब किसी को मुसलमान करते थे, वो तो मुस्लिम करते थे, ये मुसलमान तो हम बने हुए हैं ना, हम मानते हैं कि मुस्लिम हैं, लेकिन हैं पता नहीं कितने हैं वो आपके सामने। अर्थ ये है कि ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का असल मफहूम क्या है कि मैं ये अहद करता हूँ कि मैं अल्लाह को उसके अलावा किसी और तरह से इलाह नहीं मानूंगा सिवाय उसके जिस तरह के अल्लाह का रसूल हजूर अलैहिस्सलाम मुझे तालीम करें। यह है कलमे का असल मफहूम, क्या कि मैं अल्लाह को उस तरह से इलाह मानूंगा जिस तरह से अल्लाह का रसूल हजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, यानी हजूर की तर्ज फिक्र अपना कर मैं अल्लाह को इलाह मानूंगा। तो अल्लाह को इलाह मानने का क्या मतलब हुआ कि मैं अल्लाह का फकीर बन गया। जब मैं अल्लाह का मोहताज हुआ तो मैं क्या हुआ? अब समझ आ गया फकीर क्या है, फकर क्या है? भाई कुरान के डूज एंड डोंट्स को आपने पकड़ लिया और सारे मखलूक से तवक्कुआत तोड़ के अल्लाह से तवक्कुआत वाबस्ता कर रही।
ये
बस इसी को फकर कहते हैं। जब आप डरो बिस्त अल्लाह के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो आप किसके फकीर हुए भाई? किससे मांग रहे हैं? मांगने वाले को कहते हैं ना फकीर। आपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना, बस बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ फकीरों से लोग मांगने बैठ जाते हैं।
मुकम्मल और जामे प्रोग्राम बातें के
जी जी,
तो थोड़ा सा वाजे कर देंगे।
देखें दो, इसका तर्जमा आप जेन में बिठा लें, जो असल तर्जमा मफहूम, सॉरी तर्जमा तो जो है वो आपके सामने है। मफहूम ये अकीमू, यानी कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं किसका? कायम करने का। अकीमू, कायम करो। क्या सलात? सलात का तर्जमा आप कर लीजिए ताल्लक। अल्लाह कहता है ताल्लक को कायम करो। आतुस ज़का, आतुस ज़कात का मतलब, ज़का कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट को, इसी से लफ्ज तज़किया नफ्स है। हमने इसे सिर्फ पाकीज़गी तक रखा। अब देखिए आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ेगा तो आप अपनी डेवलपमेंट की काबिश करेंगे ना। बस इतनी सी बात है। अकीमु सलात। अब सलात के तीन दर्जे, ताल्लुक तीन किस्म का है। एक वो ताल्लुक जो मखलूक का खालिक से है, एक वो जो खालिक का मखलूक से, और तीसरे दर्जे पे ये वो ताल्लुक है जो मखलूक का मखलूक से। अब अगर गहराई में गौर करें तो अल्लाह तबारक व ताला का ताल्लुक हमसे मखलूक से तो हम वक्त कायम है, क्योंकि हमारा सांस कौन चला रहा है?
अल्लाह
खालिक। ठीक है, हमारा दिल कौन धड़का रहा है? दिल कौन चला रहा है? जब तक चलाता है वो चलता है, जब रोक देता है तो वो रुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं चला पाती। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह का ताल्लुक तो बंदे से हर वक्त कायम है। बंदा जब इस ताल्लुक की तरफ मतवज्जो हो जाता है तो उसका ताल्लुक अल्लाह से कायम होना शुरू हो जाता है। फिर जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाता है तो उसे पता चलता है मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो दूसरी मखलूकात के काम भी आता है, उनके साथ अच्छी तरह सफर भी करता है। जैसे ट्रेन का सफर कर रहा हूँ तो अपने साथी पैसेंजर के साथ वो बड़े धीमे बात करता है, इखलाक से बात करता है कि उसका अच्छा इम्प्रेशन पड़े, इखलाक। ठीक है, यानी के हाँ अकीमु सला। अल्लाह रब्बे करीम का इरशाद है कि मेरे साथ मेरे ताल्लुक को महसूस करो, ताल्लुक को कायम करो। लफ्ज़ अकीम, कायम करो। वातु ज़कात, खुद को डेवलप करने में तवज्जो दो। ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ वो जो तर्जमा किया गया, वो जो शरीयत में जो है कि 2.5 रुपए ज़कात देना, वो शरीयत है। एक चार दर्जे है ना, शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। ठीक हो गया। शरई तौर पे तो वही तर्जमा चलेगा, लेकिन जब आप इसको हायर लेवल पे सोचेंगे तो असल में क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट। अब वाजे हो गई बात। इस बिना पे हजूर कलंदर बाबौलिया ने फरमाया कि अकीमु सलात व आतु ज़कात एक जामे प्रोग्राम है। वाजे हो गई बात। अब देखे ना, हमने तर्जमा कर दिया नमाज पढ़ो। अब करने के काम को अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उसके वो बेनिफिट तो नहीं मिल सकते ना। अब जब आप वजू करके मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो आपको महसूस करना है क्या कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। आपको अपने हजूरिये कल्ब का एहसास होना चाहिए या नहीं। हमारे यहाँ शिकायत ये होती है कि जी हमें नमाज में ख्यालात ही बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका जहन उस वक्त रिलैक्स करता है तो जाहिर है कि सारे दुनिया जहाँ का कचरा जो है वो उस वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अब हजूर मुर्शिदे करीम इसका क्या हल बताते हैं कि जी पहले आप मुसल्ले पे 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये तसव्वुर जमाएं कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शाना हूँ मुझे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत और शफकत के साथ तक रहे हैं, देख रहे हैं। अब बच्चे को माँ प्यार से देख रही हो तो बच्चा कितना चौड़ा होगा, ग्रो ही करेगा ना। तो ये वाजे हो गई बात। तो अगर आप ये नमाज पढ़ने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके ये मर्तबा आसान का मुरक्बा छोटा सा कर लिया करें 5 मिनट के लिए, तो आपके एहसास में बड़ी वाजे तब्दीली नजर आएगी। आपको महसूस होगी, आप उठते बैठते चलते फिरते महसूस करेंगे कि अल्लाह निगरान है। अल्लाह जब निगरानी कर रहा है तो हिफाजत भी कर रहा है। ठीक हो गया। जी माशाल्लाह।
जी सवाल कर
सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं, ये नशीब का एहतमाम ही के लिए है। जी
सर, आपने जो पहले सवाल का जवाब दिया था कि दर्जा है कि हम अल्लाह मुझे देख रहे हैं और फिर हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो सर हम अल्लाह को हमारे जहन में अल्लाह का तो कोई रोला कोई चीज भी वाजे नहीं है।
कोई बात नहीं, देखें बच्चा जब दुनिया में आता है तो कुछ भी वाजे नहीं होता उससे, हाँ या नहीं। देखिए खानकाही निजाम में हमें बार बार इस तरफ मतवजो किया जाता है कि अल्लाह ने कौन कहा, कुरान मतवजो कर रहा है, कुरान में बात बताई गई है कि अल्लाह ने कौन कहा, सारी नौए सारे अफराद की रूहें पैदा हो गई, फिर अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहा। तो मखलूकात में अल्लाह की इस सदा की गुंजार पैदा हुई और उनके अंदर समात मुतहर्रक हो गई। देखे समात उनके अंदर क्रिएटेड थी लेकिन एक्टिवेट हो गई, ठीक है, मुतहर्रक हो गई। अब वो जो समात उनके अंदर मुतहर्रक हुई तो उन्होंने साथ में क्या हुआ, अकल ने काम किया, फहम ने काम किया, फिर तजस्स लहराया। तो मैंने क्या सुना, किसने कहा, पूछा, क्या पूछा, गौर करें, उसके नतीजे में उनकी बसारत एक्टिवेट हो गई। कौन पूछ रहा है, तो उनकी निगाह उस हस्ती पे पड़ी जिसने सवाल किया था। उन्होंने अल्लाह को देखा, रूह ने अल्लाह को देखा या रूहों ने अल्लाह को देखा, फिर इसको तोला, समझा कि ये जो हस्ती कह रही है क्या लस्तो बे रब्बे को, तो उसके बाद उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। जब उनकी फहम ने उनको ये जता दिया कि हाँ यही तो रब है, पहले तो उन्हें ये भी अंदाजा हुआ कि उनके अंदर था कोई चीज रखी हुई जिसकी वजह से उन्हें पता चला रब कहते किसे, रब होता क्या है। जब उस चीज का इदराक हो गया, उनकी फहम में आ गई बात, क्या ये पूछने वाली हस्ती को ही जेब दे रहा है कि वो ये सवाल करे, तो कालू वो बोले बला, जी हाँ क्यों नहीं। अब हमें बार बार मतवजो किया जाता है कि हमारी रूह चूके अल्लाह को देख चुकी है, अगर हम रूह के देखने की उस याददाश्त तक पहुंच जाएं, क्या कहा, अब देखे ना, आप जब किसी चीज को देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये चांद है, ये सूरज है, क्यों, क्योंकि आपने जब पहली दफा चांद देखा तो आपने हैरत से देखा, तो आपकी अम्मा ने कहा चंदा मामू दूर के बड़े पताए दूर के, तो आपके हाफजे में उसका नाम बैठ गया, ठीक है। चांद तो पहले से मौजूद था, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए आपका शऊर इतना हुआ कि ये क्या है, अम्मा ने कहा ये कौवा है, आपने फिर पूछा क्या, उन्होंने कहा कौवा, आपने फिर पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा, हत्ता के फिर जब कौवा सामने आया आपने कहा अच्छा ये कौवा है, और करें। इसी तरह जब हम कोशिश करते हैं, साविश करते हैं, जितो जोहद करते हैं, ये मुराकबे असल में ये सारी साविश और कोशिश और जितो जोहद का दूसरा नाम है, कि किसी तरह हम अपने अंदर उस याददाश्त को उजागर कर लें। और करें, अब आपको एक मैं मादी मिसाल करता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों क्या खाया था दोपहर में, तो फौरी तौर पर नहीं बता सकेंगे, आपको रुकना पड़ेगा, रुक के आप हिसाब लगाएंगे, अच्छा कल क्या खाया था, वो परसों हाँ ये था, ऐसे ही होगा कि नहीं। तो ये इसी तरह जब हम दुनियावी ख्यालात से पॉज लेकर रुक कर रफ्ता रफ्ता अपने बचपन की तरफ जाके देखते हैं कि मैं माँ के पेट में कहाँ से आया, मेरी रूह कहाँ थी, उसने देखा तो उसने क्या देखा, जब आप उस तरह सोचेंगे तो अगर ये याददाश्त आपकी रिफ्रेश हो गई, तो आपको हर जगह अल्लाह दिखेगा। देखे ना, अगर हम देखना चाहें तो हर चीज में जरा सा तफक्कुर करने की बात है, उसकी बनावट किसकी है, अल्लाह ने बनाया, ठीक, अल्लाह ने किसी को वो थॉट इंस्पायर किया, उसने ये चीज बनाई। अब आपने चीज देखी, उसके मुझे दिया, उसके बनाने वाले की तरफ जहन गया, तो फिर उससे अगले दर्जे पे आपके आएगा ना जहन में, कि भी उसके जहन में किसने डाला। जब आपका जहन चीजों से हटेगा, चीजों को बनाने वाले से भी हटेगा, तब जाके कहीं अल्लाह का ध्यान आएगा ना, वरना तो हम चीजों में ही खोए हुए हैं। और खोए हुए को क्या कहते हैं? खोता कहते हैं। जी, तो हम दुनिया में खोए हुए हैं, इसीलिए अल्लाह ने मना किया, वह सरल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया की जिंदगी का असर लिए रहे, तुमने देखा ही नहीं कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई। यानी वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज की कि विजन, विजडम, आगे देखना, ये आगे देखने की है ना मश्क। क्या आप एक चीज को देखते हैं, आप कहते हैं भाई बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, वाह, आपका जहन यहाँ रुक गया। अगर आप बनाने वाले के जहन को अप्रिशिएट करने के बाद एक कदम और आगे चले जाएं कि उसको ये सलाहियतें और ये दिमाग और ये सोच किसने अता की, अब आपका जहन कहाँ फोकस हो जाएगा? खालिक के, हकीकी के, ठीक हो गया ना?
सर, एक मेरे जहन में सवाल था, दरअसल में सदस्य आए और वो तो मुझे याद नहीं है, एक तर्जुमा आता है कुरान में, नमाज वस्ता की हिफाजत करो, तो सर ये मतलब क्या मतलब है?
सलाते वुस्ता, सलाते वुस्ता, तालक को बैलेंस रखना क्यों नहीं ले रहे हम? हाँ जी, देखे ना, तालक में एक एवरेज या उसे कहते ना तवाजन। अगर आप जरूर दुनिया को छोड़ के अल्लाह में घुसेंगे तो वो रबानियत कहलाएगी, अल्लाह को छोड़ के दुनिया में घुसेंगे तो दुनियादारी और मादा प्रस्ती कहलाएगी, हाँ या नहीं? अल्लाह रब करीम ने खुद क्या इरशाद फरमाया, रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनत व फिर आखरत हसनत, यानी दुनिया और आखरत में बैलेंस रखेंगे तो बात बनेगी। तो आप सलाते वुस्ता का तर्जुमा ये क्यों नहीं लेते कि अल्लाह रब करीम कह रहे थे वुस्ता एवरेज बैलेंस में रख के चलो। सलात का तर्जमा क्या हुआ, ताल्लुक हुआ या नहीं हुआ?
ताल्लुक हुआ जी, बिल्कुल।
अब हमने उसे आम मफहूम लोगों ने ये लिया कि भी पांच औकात हैं तो वो दरमियानी नमाज असर बनती है, फजर और जोहर एक तरफ और मगरिब और इशा दूसरी तरफ, ये वो वस्त में आ गई। वो इस तनाजुर में नमाज असर को उन्होंने सलाते वुस्ता तर्जमा कर दिया, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसे ब्रॉडर सेंस में आप देखें, जब सलात का तर्जमा ताल्लुक करेंगे तो इसका वुस्ता का क्या मतलब हुआ, सेंट्रल पॉइंट, या तो वुस्त सेंट्रल पॉइंट को कहेंगे या तवाजन को कहेंगे। तो इस तरह से सोच के देखने में क्या हर्ज है?
कोई हर्ज नहीं है सर, बहुत अच्छा हो जाएगा कि ताल्लुक करना जो अपने रब से है उसको बैलेंस।
यानी सारा ये नहीं कि सारा ये अल्लाह के लिए आप 24 घंटे अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बाकी दुनिया के काम ही ना करें तो क्या होगा, दुनिया का निजाम ही बिगड़ जाएगा। और अगर हम जैसे घुसे हुए दुनिया में खुपे हुए तो क्या हुआ, हमारा जो ज़हनी और रूहानी निजाम है वो तलपट हुआ पड़ा है, ठीक हो गया? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। एक लफ्ज में बताऊं आपको, नागवारी, ये जो हमारे अंदर नागवारी के जज्बात है ना, جب کوئی چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو کیا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. جب بیزاری بڑھتی ہے تو تناؤ بڑھتا ہے. جب تناؤ بڑھتا ہے تو کل کل شروع ہو جاتی ہے, جو منہ ماری سے شروع ہو کے مار پیٹ پہ جا کے اختتام پذیر ہوتی ہے. ہاں یا نہیں؟ اب یہ سارا کیا ناگواری محسوس کرنے کی عادت کو خراشیں کا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے بنے ہوئے معیار. اس نے یہ کیا, مجھے برا لگ رہا ہے, مجھے ناگوار گزر رہا ہے. میں کوئی دروغہ ہوں کہ مجھے ناگوار گزر رہا ہے؟ اللہ نے منع کیا لستو بے مسائطرین, تمہیں کوئی دروغہ نہیں بنایا, تمہیں مستر بردار نہیں بنایا, یعنی کہ تم لکیریں نہیں لگاؤ, تم ناپو نہیں کہ اگلا سیدھا ہے کہ نہیں. خلاص کہاں سے پڑی جب میں اپنا احتساب کرنے کے بجائے دوسروں کا جج بن کے بیٹھ گیا؟ حضور مرشد کریم نے کہا امت مسلمہ میں یہ چیز کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اپنی اصلاح کی طرف لوگ کم مائل ہیں. ہاں یا نہیں؟ یعنی کہ ذرا سی توجہ دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نسمہ کی خراشوں کی بجائے ناگواری. اب دیکھیں نا, آپ کو ایک چیز ناگوار گزری, آپ نے صبر کیا, اب وہ اندر آپ کوڑ رہے ہیں, کوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. جب آپ کی انرجی ضائع ہوگی تو آپ صحت مند رہیں گے. اب اس کا حل کیا بتایا؟ کہ اگر یہ ان کو بیلنس کر دیا جائے, یعنی طرز فکر کو, جیسے آپ یہ لفظ ناگواری کو ہٹا دیں. اسی بات کو میں نے کتنی بار عرض کیا, برا لگنا شیطنت ہے, کہا یا نہیں؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ چیز بری لگ رہی ہے, نہیں برا نہیں لگنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک باریکی, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا مطلب, کوئی غلط کر رہا ہے تو میں اس کو بھی برا نہ دیکھوں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں, غلط کو غلط دیکھنا اور اس کی اصلاح کی کاوش کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. لیکن اصلاح کرنے میں, غلطی کو غلطی کے طور پہ دیکھنے میں اور اس کو برا جاننے میں فرق ہے. مثلا اب گھر میں بیٹھے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آیا اور وہاں اس نے پوٹی کر دی. اب مجھے بتائیں کہ ماں کتنا امبیرس فیل کرے گی؟ کیا وہ بچے کو برا دیکھے گی یا غلط دیکھے گی؟ اب فرق سمجھ آ گیا. بچے کو وہ بات اٹھا کے لے جائے گی, دو چار چماٹ بھی مارے گی, تمہیں منع کیا ہے کہ جب پوٹی آئے, پیشاب آئے, باتھ روم میں آنے. ہاں یا نہیں؟ دیکھیں, اس نے غلطی کو غلطی دیکھا اور اس کی اصلاح کی, کیونکہ اس کے ڈومین میں ہے نا. اب ظاہر ہے میں مہمان ہوں, میں تو اٹھ کے بچے کو نہیں سن جاؤں گا وہاں بات کو, وہ میری ڈومین نہیں ہے. لیکن اب میں برا منانے بیٹھ جاؤں تو غلط ہو جائے گا. بچہ ہے, غلطی ہو گئی, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب وہ جانے, اس کے اماں ابا جانے, ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ اگر میری ڈومین میں غلطی ہوئی ہے تو مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر میری ڈومین میں نہیں ہے اور یہ غلطی ہو رہی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ ایک بڑا ہونے کے ناطے, ایک ویل وشر ہونے کے ناطے, آپ کو آگاہ کر دوں کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کو ذرا سنبھال لو. برا دیکھنے کی اجازت مجھے کس نے دی کہ میں گھر جا کے تذکرے کروں کہ وہ جی ان کے ہاں پہ یہ ہوا تو ان کے اس نے یہ کیا؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا یہ نہیں ہے؟ تو یہ ناگواری, ایک لفظ برا لگنا شیطنت, تو اس کے اثرات ناگواری ہیں اور اس سے نسموں میں خراشیں پڑتی ہیں. یہ حضور مرشد کریم بتا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کتنی گہری سائنس بتائی, لیکن آپ کی طرح کسی نے توجہ سے پڑھا نہیں, لہذا وہ پڑھ کے گزر گئے. جب آپ نے پوچھا تو میرا بھی دھیان گیا, میں نے اس کو کوریلیٹ کر کے آپ کو کہ وہ بتا دیے کہ خراشیں کیسے پڑتی ہیں. जब हमें कुछ चीज बुरी लगती है, नागवार गुजरती है, तो इससे क्या होता है? अब देखे ना, आप में ये नागवारी का जज्बा ही नहीं है, फर्ज करें, फर्ज करें तो आप तसव्वुर करें कि आप कैसी हों, कैसा बिहेव करेंगी। मतलब आप हर हाल में शांत रहेंगे, हर एक को आपका एटीट्यूड अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कोई चीज बुरी लगी नहीं रही। भी अगर किसी ने बदतमीजी भी की, आपने मुस्कुरा के मुंह फेर लिया, किसी और से पूछने लग पड़े, जी आपका क्या हाल है, आप खैरियत से? यानी आपने उसको इग्नोर मार दी, वो थोड़ी देर बाद, कुछ अच्छे बाद सोचेगा तो सही कि मैंने बदतमीजी की, उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया। यार वो तो ग्रेट माइंड है, ये ग्रेट माइंड, यहाँ पे ग्रेट माइंड से एक बात याद आ गई, बचपन की जुमले सुना करते थे कि स्मॉल पीपल टॉक अबाउट देमसेल्फ। एवरेज पीपल टॉक अबाउट अदर, ठीक है, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट इवेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ जो सब्लाइम लोग होते हैं, दे टॉक अबाउट देयर क्रिएटर। तो ये नागवारी के दर्जे हैं जिनसे ये खराशें पड़ती हैं। आप अगर माँ हैं और आपके अंदर नागवारी नहीं है, और आपने अपनी औलाद से ये तरबियत दे दी कि नागवारी नहीं, क्या होगा? बेजारी भी नहीं आएगी, तनाव भी नहीं आएगा, और किलकिल भी नहीं होगी, मुमारी भी नहीं होगी, मारपीट भी नहीं होगी, मुआशरा पुरसकून हो जाएगा, कम से कम आपका घर तो पुरसकून हो जाएगा ना, ठीक हो गया?
कोई कोई भी इतना या किसी का भी किया वक्त हमें लाजमानियत से मौसूल होता है, और यही लाजमानियत जितनी इतना से जमानियत के अंदर इस्तेमाल करती है। लाजमानियत मौजूदा के नाना की देह से सर इसको थोड़ा सा
मतलब ये कि हर इतला कहाँ से आ रही है? जहाँ से आ रही है उसका नाम है लाजमानियत, यानी वहाँ पे जमाना भी नहीं है। जब ये वामा से नीचे उतरती है, ख्याल के दर्जे पे आती है, तो ये गोया लाजमानियत से जमानियत में आ गई, ठीक है। जब आपका जहन ख्याल की तरफ मतवज्जो हुआ, तो उसमें स्पेस पैदा होना शुरू हो गई, और वो जमानियत हावी है, लेकिन उसने स्पेस की बुनियाद रख दी। जब ये तस्वुर बनी, तो अब स्पेस के खदोखाल वाजे होना शुरू हो गए। फिर ये जब एहसास में दाखिल हुआ, तो अब मकानियत गालिब होना शुरू हो गई। अब जमानियत पसे पर्दा जा रही है। जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और केमिकल इम्पल्सिस और मोटर इम्पल्सिस बन के नाफिज होना शुरू हुआ, तो अब स्पेस गालिब हो गई और जमानियत उसके साथ साथ चल रही है, ठीक हो गया?
नहीं,
कायनात की तकलीफ तो वो तो सब 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 समावाद कहा है, और सित्ता से अय्याम का है, छह दिनों में छह दर्जों में तकलीफ हुई है, उसको समझने के लिए शऊर के सात दर्जे हैं।
सही
जी, सवाल फरमाइए।
हम मतलब ये कि सांस का दर्द भी तो एक मसलस ही है, तो ये मसलस
नहीं। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से लिंकअप नहीं करें, आप इसको बुनियाद को समझें कि दायरा एक ऐसी हरकत है जो मुसलसल, और मुसलस एक ऐसी हरकत है जो कुछ फासले के बाद अपना रुख बदलती है, तो वो एंगल बनता है। जब रुख की तब्दीली होगी तो एंगल बनेगा। जहाँ पे एंगल्स नहीं बनते वो दायरा है। अब हम क्योंकि इसे बड़े महदूद मानों में समझते हैं, हमारे जेहन में लफ्ज दायरे के साथ एक गोल शक्ल आती है। अगर हम इसको समझें कि हरकत वो हरकत जो मुसलसल जारी है, जो रुख नहीं बदल रही, वो दायरा है। ठीक हो गया? चारों ओर या अपने अंदर जो भी कहें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। बात को समझे, बुनियादी जुमले को पकड़ लें। मुसलसल वो हरकत जो मुसलसल जारी है, उसका ना कोई बिगिनिंग का पॉइंट है ना एंडिंग है, क्योंकि मुसलसल में स्टार्टिंग पॉइंट भी है, फिर टर्निंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तीनों चीजें उसमें है, इसलिए वो मुसलस कहलाए। अब क्लियर हो गया? अब बंदे के अंदर अगर एक हरकत मुसलसल जारी है तो वो क्या है? वो उसका अल्लाह से ताल्लुक है। अल्लाह का उससे ताल्लुक जो है ये मुसलसल है, ये दायरा है। जब आप कभी दुनिया की तरफ मतवज्जो हुए, दुनिया में आप एक चीज देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, तो ये सब मुसलस हुआ क्या ना हुआ?
मुसलस हुआ।
ठीक हो गया? वाज हो गई बात? जी काफी है या है किसी का कोई सवाल?
टाइम है तो मैं अपना सवाल जरूर करूँ।
जी जी जरूर।
जी सर, एक्चुअली मुझे ये समझना है, नफ्स अम्मारा जो बुराई पर उकसाता है, और नफ्स लवामा है जो बुरा सोचने पर मलामत करता है और नादिन भी होता है, और एक अखलाकी वजूद है। सही राह चलने पर और गलत राह छोड़ने पर इत्मीनान महसूस करता है, तो ये एक्चुअली इसमें डिफरेंस किस तरह महसूस करें?
देखिए नफ्स की तीन हालतें बताई हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना। अगर आप एक बात गलत हो रही है, आपसे सरजद हो रही है और आप उसको बुरा नहीं मना रहे, तो ये नफ्स अम्मारा कहलाता है। अगर आप में ये शऊर पैदा हो गया कि समथिंग इज बीइंग डन रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, तो ये नफ्स लवामा हो गया। ठीक है? अब आपने चेक कर लिया कि और आपको पता चल गया कि गलत नहीं करना, ठीक है भाई, कुरान के डूज एंड डोंट वाली मैं मिसाल बार बार अर्ज करता हूँ। जब आप उसमें कंफर्म हो गए तो आपके अंदर क्या हो गया? इत्मीनान कि आई एम डूइंग वेल, आई हैव डन वेल, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज प्रॉपरली, तो यू विल बी हैविंग अ सेटिस्फेक्शन, यू विल बी हैविंग इनर पीस। क्या होगा इनर पीस का सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि आपका सांस रिदमिक हो जाएगा, तबील होगा, स्लो होगा। हाँ या नहीं? जब आप जोर लगा रहे होंगे, काम को गलत तरीके से कर रहे हैं, तो जोर आजमाई में आपके सांस की रिदम बराबर नहीं रहेगी। इसलिए नफ्स का लफ्ज सांस के साथ जोड़ के देखें तो आपको पता चलेगा या आई या तो इसमें लफ्ज आया ताया है, या आई या तो हम इसको तर्जमा करते हैं या यो हन नफ्से मुतमईना, नहीं या हया तो है नफ्स मुतमैना, एक निशानी इत्मीनान से सांस लेना भी तो है। जब आप इत्मीनान से सांस ले रहे हैं, यू आर सो वेल सेटिस्फाइड ऑफ योर सेल्फ एंड योर परफॉर्मेंस, अल्लाह क्या कहते हैं, उजीला रब्बे का, अब तुझे चाहिए कि तू अपने रब की तरफ रजू करे और इस तरह रजू करे कि राजिया दिल मर दिया, कि वो तू उससे राजी हो, हम राजी नहीं है अल्लाह से, हम अल्लाह के किए को अल्टर करते हैं। तो जब आप उससे राजी हो जाएंगे तो वो तो आपसे राजी राजी है वैसे ही, माँ तो बच्चे को बच्चे से हर हाल में राजी है, अच्छा करे बुरा करे माँ तो माँ, और वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। वादे हो गया, या हमारा लवामा और मुतमईना असल में क्या है, बस स्टेट ऑफ माइंड है,
स्टेट ऑफ माइंड,
आपका डिग्री ऑफ रियलाइजेशन है कि इफ यू आर हैव द रियलाइजेशन दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, समथिंग इज बीइंग डन रॉन्ग बाय मी, ये लवामा हो गया। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू हैव नो रियलाइजेशन बट यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द हैक ऑफ इट, ये हमारा हो गया। लेकिन अगर आपने उसको चेक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो क्या हो गया, यू विल बी हैविंग अ पीस ऑफ माइंड, इनर सेटिस्फेक्शन, ये नफ्से मुतमईन। मुख्तसर कर दिया मैंने क्योंकि टाइम जरा कम था, इसलिए मैंने निपटा दूं।
बहुत शुक्रिया सर,
अल्लाह खुश रखे जी, ठीक हो गया जी,
जी
चले फिर रहती है बात, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।